उतर भव जल पारा कट है यम के पासी 33 कोटि अदारा ध्यान से 88 उतर भव जल पारा कट है यम के पासी सात साही कर जोरों विनती करो धरो चरण पर शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने की दिया नाम बख्शीश कोटि नीचे नम कर दे कोटि कोटि सजदा करो कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल मखियो मैं बांधी जाम गुना अव गुण किए तो बहुत किए करत न मनी और भावे बंद बख्श दियो भावे गर्दन तर गुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब नवाज जो मैं पोत कपोत हूँ बहुर पिता कुल मैं अपराधी जन्म का नकशक बरे विकारी तुम दाता दुखे बंजना मेरी करो संभर जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखूं रो चरणा ऊपर शेष धरूं कहूं जो कहनी हो कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं मैं तो करो तो बवड़ो दूर दूर करो तो जाऊं जा रखो तो ही रहूं जो ते वो सुख परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगर नरेला में ये परमेश्वर की अमर कथा आज 11 अप्रैल से प्रारंभ हुई जिस नगरी के पुण्य उदय होते हैं उस नगरी के अंदर ऐसे शुभ समागम संत समागम प्रारंभ हुआ करते हैं और जो पुण्यात्मा इस पवित्र समागम में आने का सुअवसर प्राप्त करती हैं वो बड़भागी हुआ करती हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डार। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मानव शरीर पाकर जो नहीं रटे हरि नाम और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमपिता परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी रामपुर परम अक्षर पुरुष आप ही स्वयं ही इस मृत लोक में आते हैं काल के लोक में आते हैं अपने सत लोक से चलकर अपने रत धाम से सत धाम से चलकर वो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं और हम अबोध अनजान आत्माओं को जो काल के जाल में और इस ब्रह्म ज्योति निरंजन द्वारा दिए गए अक्षीणिक सुख में, संतान और संपत्ति के सुख में हम परम पिता को भूल चुके हैं, वो परमेश्वर स्वयं ही आकर अपने बारे में अपनी याद दिलाता है, हमें अपने निज घर की याद दिलाता है जहां से हम आए हैं, और वहां से आने के बाद हमें कितने कष्ट हो रहे हैं, कितने हमें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, वो भी हमें याद दिलाते हैं। वो परमेश्वर कहते हैं कि मानव शरीर पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना, भाई फिर बनवाया क्या काम। जैसे जिस कूप में वेल में पानी ना हो, वेल विदाउट वाटर, पानी के बिना कुआ, उसका नाम वैसे कुआ है पर गुण कुए के नहीं। जिस प्रकार जो पुण्यात्मा मानव शरीर पाके प्रभु की भक्ति नहीं करते, वो नाम मानो अवश्य है लेकिन गुण मानुष वाले नहीं हुए। ये याद दिलाने के लिए शुभ समागम किए जाते हैं, और जो प्राणी इस सत्संग में नहीं आते उनका दुर्भाग्य समझो, और जो सत्संग में आ जाते हैं उनका सौभाग्य समझो, क्योंकि जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक हमें ये ज्ञान नहीं हो सकता कि वास्तव में मानव शरीर का कैसे सदुपयोग करना है। इससे पूर्व हमने क्या मान रखा है, क्या मान रखा था, जैसे सत्संग नहीं सुना था, और पुण्यात्मा जो पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हैं उनके हृदय में चाह परमेश्वर की बराबर बनी हुई है। आज भी वो ईश्वर की तलाश तड़फ में घूम रहे हैं, कोई न कोई आर्ट लेकर किसी न किसी संत का या कोई अपनी धार्मिक पूजाओं का, परंपरागत पूजाओं का, लोक वेद के आधार पर अवश्य सहारा आस लेकर बैठे हुए हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आए थे, नहीं आते हैं, तो हम क्या सोच रखा था कि जैसे संतान हो जाएगी, पहले जवान हुए, फिर शादी हुई, फिर संतान हुई, और संतान के बाद फिर उन बच्चों की परवरिश में लग गई, फिर बच्चों कामना की परमात्मा इन बच्चों की भी संतान हो, इनकी रोजी रोटी अच्छी हो, वो सब कुछ भी हो गया, फिर संतान भी बच्चों का होगी, और उसके साथ साथ हम अपनी धार्मिक पूजा भी करते रहे जैसे लोक वेद के आधार पर। लोक वेद क्या होता है, जो अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाया ज्ञान, जैसे किसी क्षेत्र में हनुमान जी की पूजा है, किसी क्षेत्र में किसी श्याम जी की पूजा है, किसी क्षेत्र में देवी की पूजा है, किसी क्षेत्र में सैयद की पूजा है, किसी क्षेत्र में श्री राम की पूजा है, किसी क्षेत्र में श्री कृष्ण की पूजा है, कोई केवल गीता के पाठ को आधार मानकर प्रभु की भक्ति और अपना आत्म कल्याण मानता है, कोई गुरुद्वारे में जाके, कोई मंदिर में, कोई चर्च में या कोई मस्जिद में, या कोई नित पाठ करके, कोई नमाज करके, या कोई व्रत करके, ये पूजाएं हमें कहां से प्राप्त हुई, लोक वेद के आधार पर। लोक वेद, लोक वेद क्या होता है, जो सुना सुनाया ज्ञान अक्षेत्रीय, जैसे किसी क्षेत्र में गणेश जी को महत्व दिया जाता है, और फिर जैसे हिंदू समाज को अपनी पूजाओं का ज्ञान है उसको भी लोक वेद कहते हैं। यदि वो शास्त्र से नहीं मिल रहा, शास्त्र कौन से शास्त्र हैं, पवित्र गीता जी, पवित्र गीता जी भक्ति का एकमात्र, ब्रह्म तक की साधना का एकमात्र शास्त्र है, और गीता जी जो है चारों वेदों का सार है, संक्षिप्त है, यानी गागर में सागर है, सागर बूंद समाना, ऐसा समझो गीता जी को। लेकिन गीता जी में और पवित्र चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक की पूजा का, साधना का ज्ञान है, और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है, पूर्ण ब्रह्म का भी है। उसके पाने के लिए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए गीता जी में और वेदों में ये ऑप्शन छोड़ रखी है, ये परमात्मा ने कह दिया कि भाई देखो, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति मैं नहीं जानता, वो तो कोई संत आएगा वो बताओगा, उसके चरणों में जाना फिर तेरा परम कल्याण होगा। तो कहने का भाव ये है कि पवित्र गीता जी एक ऐसा शास्त्र है ये न किसी मजहब से संबंध रखता है न किसी जाति विशेष से किसी धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये पवित्र शास्त्र महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लगभग 5500 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया गया था और भगवान ब्रह्म ने ज्योति निरंजन ने वेद व्यास जी की अंदर प्रवेश करके जैसे प्रेत आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और अपनी बोली बोल जाती है ऐसे ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने क्षर पुरुष ने वेद व्यास जी में प्रवेश करके ये पवित्र गीता जी का की रचना की थी और उसी ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता जी को युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था और ये गीता जी का ज्ञान भी दिया और साथ में अर्जुन को युद्ध करने के लिए मजबूर भी किया। तो ये शास्त्र ना किसी मजहब से धर्म से संबंध रखता है ये केवल मानव मात्र के कल्याण का एकमात्र शास्त्र ब्रह्म तक की साधना और ज्ञान पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के की जानकारी का है और चारों वेदों में पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो नहीं दी लेकिन उसकी जानकारी बाय नेम दी है। नाम लिख लिख कर कहा है कि वो परमात्मा कौन है वो परमात्मा का ये नाम है वो जो सतलोक में रहता है वो पूर्ण ब्रह्म है सारी सृष्टि का रचनहार है वो तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का जो है मनुष्य जैसा शरीर है और तेजो में जनराट है जनराट माने मनुष्य जैसा चमकीला वेदों में ऐसा परमेश्वर स्वर ज्योति रतधामा यानी वो उसका नाम भी लिखा है वो कौन है वो कबीर अंगारी असी। उसके बाद इन वेदों और पवित्र गीता जी के अतिरिक्त पूर्ण परमात्मा की भक्ति के उनकी जानकारी और भक्ति के पवित्र शास्त्र पवित्र परमेश्वर कबीर साहिब की पवित्र अमृतमय वाणी जिसमें चारों वेद पवित्र गीता जी कुरान पुराण सभी का सामूहिक ज्ञान है और उसमें साथ में ये भी है कि भक्ति पूर्ण परमात्मा की भक्ति का भी वो मंत्र भी विद्यमान है जिससे हमारा कल्याण होगा और साथ में गुरु ग्रंथ साहिब क्योंकि गुरु नानक देव जी को भी उस परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त की प्राप्ति हुई थी उन्होंने उसको साक्षात देखा था सतलोक में सचखंड में और वो कैसा है उन्होंने वर्णन किया कि वो मानव सदृश है उसका नाम क्या है वो भी अपनी पवित्र वाणी में वर्णन दिया है और वो नाम भी लिखा है जिस नाम से उन्होंने प्रभु को पाया यानी उस अमर स्थान पर अपना अस्तित्व बनाया वहां अपने स्थान ग्रहण किया वहां वो चले गए। उसी प्रकार आदरणीय गरीबदास जी महाराज छुडानी वाले जो स्वयं परमेश्वर आकर मिले थे उनको सतपुरुष और सतलोक में सचखंड में लेकर गए थे और फिर वापस आत्मा को छोड़ दिया था शरीर में और फिर उस पवित्र अपने पवित्र परमेश्वर की महिमा को आदरणीय श्री गरीबदास जी ने आंखों देखा हाल कलम तोड़ महिमा गाई है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा को श्री आदरणीय श्री दादू जी महाराज ने देखा उसको भी वो सतपुरुष स्वयं आए थे और दर्शन दिए थे मंत्र दिया था सतलोक दिखाया था 3 दिन और 3 रात तक दादू जी की शरीर बेहोश पड़ा रहा था अचेत रहे थे उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे सचखंड में वो सतपुरुष अपना ही रूप दिखाया था और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस भेज दिया था। उसके बाद दादू जी ने अपने पवित्र परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सतपुरुष की कलम तोड़ महिमा गाई उसका नाम ले लेकर गुण गाए वो कौन परमात्मा है। ऐसे आदरणीय धर्मदास जी बांधवगढ़ वालों ने उस परमेश्वर को देखा सचखंड गए सतलोक पहुंचे सतपुरुष को देखा वो उसका कैसा रूप है मनुष्य जैसा रूप है एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा उस परमेश्वर का दीप्त तेजो में शरीर है स्वर ज्योति स्वयं प्रकाशित परमेश्वर है वो सतपुरुष है वो अमर पुरुष है। ऐसे ही आदरणीय श्री मुरुखदास जी को परमेश्वर मिले उनको अपना सचखंड सतलोक दिखाया उनके बाद उन्होंने अपनी वाणी में उसी परमेश्वर को की महिमा गाई पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की उसका नाम बताया। तो कहने का भाव ये है कि पूर्ण परमात्मा भक्ति के मार्ग के पूर्ण परमात्मा को पाने का और सही ज्ञान जानने का एक नंबर का शास्त्र कबीर परमेश्वर की वाणी है यानी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी और भक्ति का तरीका और उसको परमात्मा को देखने के बाद जिन महापुरुषों ने उनके साक्षात दर्शन हुए उनमें से भी उनके नाम गिनाए। इन इन प्यारी आत्माओं ने भी अपने परमात्मा की ज्यों की तो महिमा गाई है, जो वेदों में वर्णन है, पवित्र गीता जी में वर्णन है, और जैसा कि उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में आप ही अपनी महिमा को बताया उसमें वर्णन है। अब देखिएगा आपको यजुर्वेद में दिखाते हैं कि वो परमात्मा कौन है, और वो परमेश्वर कबीर जो है अपनी महिमा आप ही बताता है और अपने सत संदेश को लेकर के स्वयं ही आता है। उसका नाम कबीर है। ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसमें यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 का और श्लोक नंबर 25 में, क्योंकि वेदों को भी ब्रह्म बोल रहा है, ज्योत निरंजन बोल रहा है, जैसा गीता जी को ब्रह्म ने बोला ऐसे ही गीता जी को जैसे ब्रह्म ने बोला ज्योत निरंजन ने, ऐसे ही वेदों को भी ज्योत निरंजन ब्रह्म ने बोला, और अपने श्वासों को जैसे कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के अंदर जैसे फीड होता है मैटर और वो बाहर आ जाता है एज इट इज, और उसमें जो वर्णन होता है वो फिर बिल्कुल उन्हीं के जो अंदर होता है ज्यों का त्यों होता है। तो जब चारों वेदों को ब्रह्म ने समुद्र के अंदर छोड़ दिया और ब्रह्मा जी को सागर मंथन के बाद उसको उसका प्राप्त हुआ, तो उसमें जो व्याख्या है भी आपके सामने बताते हैं, ज्यों की त्यों गीता जी मिलती है और ज्यों की त्यों वेद की वाणी मिलती है। इसके 29 में के अध्याय नंबर 25 में, अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 में आप देखिएगा। ये तो आपको केवल संस्कृत दिखाऊंगा इस वेद से, क्योंकि ये वेद है यजुर्वेद, और इसमें आप संस्कृत देखिएगा। एको न 300 अध्याय 29वां अध्याय संस्कृत देखिएगा, ये है एक 25 नंबर मंत्र है अध्याय नंबर 29 का। इसमें देखिएगा समुदो अध्याय मनुष्यो दुर्णे देवो देवान यदसी जात वेद आच वहम मित्र मह चिकित्वान तवम दूत कबीर असी परचेता। स्पष्ट लिखा है कबीर असी, वो कबीर परमेश्वर है, परचेता माने बोध कराने वाला, दूत माने सत ज्ञान को लेकर आने वाला, चिकित्वान, चिकित्वान माने बिल्कुल समस्त ज्ञान, जिसमें कोई रोग ना हो, कोई अज्ञान ना हो, बिल्कुल समस्त ज्ञान को लेकर आने वाला स्वयं ही, तवम माने आप ही, दूत है वो स्वयं ही अपने सत संदेश का संदेश वाहक बनकर आने वाला वो कबीर असी परचेता, वो कबीर परमेश्वर है जो हमें बोध कराने वाला। अब इसमें स्पष्ट अर्थ लिखा है कबीर। अब इसको आप देखेंगे परिभाषा प्रभु की इस दास के द्वारा, एक सब पवित्र शास्त्रों की मलाई निकाल कर इसमें फीड कर दिया है, जिसमें चारों वेदों के बहुत ही, वैसे तो सारे अच्छे श्लोक होते हैं, लेकिन जिससे हमें अपने परमात्मा की पहचान होगी उनको ही हमने ज्यादा लिया है, जिससे आपको विश्वास दृढ़ हो जावे कि वास्तव में ये परमात्मा कौन है, और इसका वेदों में भी प्रमाण है तो फिर कसर नहीं, फिर कोई कमी नहीं होती। समझदार व्यक्ति को कहते हैं संकेत ही काफी होता है। ये देखिएगा वही फिर संस्कृत इसलिए दिखाई थी वेदों में, कहीं आपको शंका ना हो जाए कि वेदों में कुछ और लिखा होगा, ये है वही समीध है अध है। हाँ ये है, ऊपर देखो नीचे देखो, यहाँ संस्कृत पीछे से शुरू होती है, ये समीद अध मनुष्यो दुरोण देवो देवान यद असी, देवान यदसी जात वेद आ वह मित्र मह चिकित्वान तवम दूत है कबीर असी परचेता, ये वही है। और आगे इसका संधि छेद करके सारे जो के तो वर्णन किए हैं, यहाँ देखिएगा समीद अध मनुष्यो दुरोण दुरेण देव है देवान यज असी जात वेद आ चै वह मित्र मह चिकित्वान, चिकित्वान माने स्वस्थ, बिल्कुल जिसमें कोई रोग ना हो, तवम माने स्वयं, दूत है माने संदेश वाहक बनकर आने वाला, कबीर असी परचेता। अब कबीर, कबीर असी माने है, परचेता माने परचेता यानी बोध कराने वाला। इसका अर्थ क्या है ये आपके सामने आ गया कि वर्तमान में, वर्तमान में जैसे अब ऐसे समय में परमात्मा मेहर बख्शता हमारे ऊपर कि जिस समय ये नादान संत अनजान लोग क्या करते हैं, आज अध माने आज अर्थात वर्तमान में दुरोणे शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक मनुष्य माने झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को समीद लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विरुद्ध रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है उसके स्थान पर देवान देव, देवताओं के देवता, भगवानों के भगवान यानी कुल मालिक देवता जात वेद पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक यज्ञ माने पूजा असी माने है। अन्य देवताओं की पूजा के स्थान पर केवल एक ही पूर्ण परमात्मा यानी सब भगवानों के भगवान कुल मालिक की पूजा है। आ दयालु मित्र में माने जीव का वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा के चकितवान स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को दूत संदेश वाहक रूप में वह माने लेकर आने वाला चय तथा प्रचेता माने बोध कराने वाला त्वम माने आप कबीर, कबीर कबीर माने कबीर असी माने है, वो कबीर परमेश्वर है सबको बोध कराने वाला। वेदों में नाम कबीर, नाम लिखा परमेश्वर का। अब कहने का भाव ये है दास का कि जो शास्त्र को त्याग कर अपने वेदों में वर्णित विधि पूजा की उसको त्याग कर जो पूजा हम कर रहे हैं उसको लोक वेद कहते हैं और उसी को शास्त्र विरुद्ध बताया है। लोक वेद के आधार पर जो पूजा की जा रही है और शास्त्र के विरुद्ध है जो गीता और वेदों में प्रभु के पाने की विधि का अनुसरण नहीं किया जा रहा उसे शास्त्र के विरुद्ध बताते हैं। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो लोक वेद है, उसके न तो कभी सुख हो सकता उस पूजा से ना तो परम सिद्धि हो ना परम गति और ना कोई सुख हो। और इन्हीं तीन कामों के लिए भक्ति करते हैं हम। तीन वस्तुओं के लिए हमारी सिद्धि हो यानी यहाँ पर हमारे कार्य सिद्ध हो और फिर हमारी परम गति हो, यहाँ से जन्म मरण का पीछा छूटे, 84 लाख योनियों का कष्ट ना आवे और सुख हो यानी हमारे जो है ना उस परमात्मा के लोक में पहुंचे जहां में फिर कोई कष्ट ना हो और यहाँ सांसारिक भी हमारा सुख हो, हमारे घर में लाभ धन में लाभ हो, परिवार में सुख रहे, इसलिए हम उस परमेश्वर की भक्ति करते हैं। लेकिन शास्त्र विधि होने से उसमें उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलता, ये पवित्र शास्त्र गीता जी आपको प्रत्यक्ष वर्णन करेगा। ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 देखो। श्लोक नंबर 23 है, जो व्यक्ति जो साधक जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मनमानी अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है यानी अपनी मर्जी से पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख कोई। हरिणि के लिए भक्ति करें और यही गीता विरुद्ध जो शास्त्र हम कर रहे हैं जो गीता जी में मना है ऐसा करते हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध करने से ये कोई लाभ नहीं। तो ये हम कर रहे थे, अब पता लगेगा, अब सत्संग सुनोगे तो ज्ञान होगा कि हम कौन सी पूजा कर रहे थे जो शास्त्र विरुद्ध है या ठीक है। ठीक है तो करते रहो और विरुद्ध है तो फिर इस दास के पास नाम लेकर अपना सुचारू कर लो, आपको आप पता लग जाएगा। 4 दिन लगातार सत्संग जो पुण्यात्मा सुन लेगी उसका कोई कसर नहीं रहेगी, पूर्ण उसको ज्ञान हो जाएगा। अब 24वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो भक्ति के कर्म करने योग्य हैं और नहीं करने योग्य हैं उनमें शास्त्र ही प्रमाण है और कोई आधार मत मानना, कोई व्यक्ति विशेष या संत विशेष की दंत कथाओं पर विश्वास मत करना, उसके लिए तेरे लिए उससे तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है और ऐसे करेगा तो भाई तेरे को लाभ होगा। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है और मत कर भाई तू जो साधना करनी है इस शास्त्रों में प्रमाण है और वैसे कर। अब शास्त्रों में क्या प्रमाण है, कौन सी भक्ति करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, वो आपके सामने ये पवित्र शास्त्र गीता ही बताएगा कि किसकी भक्ति करें या किसकी ना करें। तो इसलिए बता रहे हैं कि सत्संग में आने से इन बातों का ज्ञान होगा कि हम कहां खड़े हैं और क्या भक्ति कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। देखो ये दास 4 दिन में आपको सभी महापुरुषों संतों की उनकी दी हुई समाज को अपनी सोच के शास्त्र वो आपके सामने दिखाऊंगा और साथ में पवित्र चारों धर्मों के पवित्र शास्त्र आपके सामने दिखाए गए दास। और कोई ये समझे कि ये संत तो निंदा करते हैं सभी की बुराई ढूंढते हैं, ये उसकी अपनी सोच कमजोर है क्योंकि वो इसको समझ नहीं पा रहा। अब देखो एक तरफ तो जैसे पीछे 500 के नोट किसी ने डुप्लीकेट बनाए थे, सरकार ने जब पता लगा तो अपनी प्यारी प्रजा के लिए कि ये आगे मारना खावे तो टेलीविजन के माध्यम से पेपरों के माध्यम से उन दोनों का तुलना किया था, दोनों को सामने दिखा था कि ये नकली है ये असली है, इसमें ये नहीं है तो ये नकली है, यहाँ तक ये नहीं है तो ये नकली है, ओरिजिनल में ये है डुप्लीकेट ये ऐसा है। तो वो निंदा नहीं कर रही थी सरकार आपकी, आपका भला कर रही थी। और उसको भी कोई नहीं कहे, सरकार तो निंदा करती रहती है, दूसरों के नोटों को नकली बना बताती है तो वो फिर नशे में बोल सके ऐसा व्यक्ति या कति अंधा हो जो कुछ भी देखता भी कोई ना वैसे ही कह रहा होगा। अब शास्त्र आपके सामने दिखाएगा दास, जो भगवान कहता है कि शास्त्र के अनुकूल साधना करोगे तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो भाई ना सुख हो ना कोई गति हो और ना कोई तुम्हारी सिद्धि कोई काम सर है। तो इसलिए हम अब इससे आपको पता लगेगा कि हम शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं या शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। अब नकली और असली सामने होंगे ही नहीं तो हमें तो जो नकली देगा वो भी असली लग रहा है, असली तो असली है ही ठीक है। तो इसलिए बड़े धैर्य पूर्वक और ये समझना कि दास का कोई उद्देश्य नहीं किसी को बड़ा छोटा बताने का, और ना दास में इतनी बुद्धि है कि मैं किसी का निर्णायक ज्ञान निर्णय कर सकूं कि ये गलत है ये ठीक है अपने लेवल से। लेकिन प्रभु कृपा हुई दास पर, उसने चेतना दी दो कोटि के जीव को और हिम्मत दी उस दास ने ये सत्य कहने की, दास को सत्य कहने की परमेश्वर ने, और साथ में ये शास्त्रों की मलाई मेरे सामने रख दी उस परमेश्वर ने। आप निकाल निकाल के कि कुरान शरीफ ये बताती है, पवित्र बाइबल ये बताता है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में ये प्रमाण है, चारों पवित्र वेदों में ये प्रमाण है, 18 पुराण ये वर्णन करती है, और वही हमने चाहिए था जो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा। इसका कारण क्या रहा? हमारे पूर्वज बिल्कुल अशिक्षित थे और जिन महापुरुषों ने इन शास्त्रों को पढ़ा वो चतुर गणे थे, अक्षर ज्ञान तो था पर उनको आत्मज्ञान नहीं था। उन्होंने शास्त्रों को जैसे जाना जैसा सोचा अपने हिसाब से फिर दंत कथा बना दी, लोक वेद बना दिए, और वो शास्त्र गीता और पवित्र गीता और पवित्र वेदों के आज देखा तो विरुद्ध थे, उससे गलत थे, अलग थे, उससे न्यारे थे, उससे भिन्न थे, तो शास्त्र विरुद्ध थे, और शास्त्र विरुद्ध थे तो हमारे पूर्वज दुख पाए, वह भूत बने, पितर बने, आज फिर उनके श्राद्ध निकाले, और इस कारण से क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से उनके श्राद्ध निकाले, क्योंकि श्राद्ध निकालना गीता जी में मना कर रखा पितरों की पूजा को, तो वो शास्त्र विरुद्ध होने से वो किया हमने तो उसके करने से हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए। अब देखो नौवें अध्याय का 25वां श्लोक, इसमें स्पष्ट मना किया भगवान ने कि जो भूत पूजेगा भूत बनेगा, पितर यानी श्राद्ध निकालेगा उसको पितर बनेगा, उसके श्राद्ध निकलेंगे, और देवताओं की पूजा करेगा वो उन देवताओं के पास जाएगा, उनका बंधुआ मजदूर होगा। अब हम जिसकी पूजा करेंगे उससे तो हम नियमन सतर्क ही है। अब हम लोग किसी अधिकारी के से प्यार करते हैं, अधिकारी हमारे से अच्छा है, वो हमें कोई राह दे तो देर ना भी दे तो ऐसे, ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 का और नीचे 25 नंबर श्लोक, ये 25 नंबर श्लोक देखिए। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को, ये श्राद्ध निकालना पितरों की पूजा है, और भूतों के पूजने वाले चौराहे की पूजा, फूल उठाना, महीना छठ महीना 13वीं वर्ष वर्षी मनाना हैं ये सब, और पिंड भरवाना, ये भूतों की पूजा। तो कहते हैं भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, भूतों को प्राप्त होंगे तो भूतों में भूत बनकर भूतों के पास जाएंगे, और मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्म कह रहा है कि जो मुझे पूजेगा तो मेरे ही पास आएगा, और जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं के पास जाएगा, और देवता ये नाशवान है, ये तो शीघ्र अक्षीणिक सुख देते हैं, और जिसके कारण गलत पूजा करने से ये प्राणी दुखी रहता है। अब गीता जी में मना किया है कि श्राद्ध मत निकालो, पितर मत पूजो, और हम पूज रहे हैं तो वो क्या है? वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब देखिएगा इसके साथ साथ आपको एक उदाहरण और देता हूं, मार्कंडेय पुराण का प्रेम पूर्वक सुनते रहना, सामने आपके शास्त्र होंगे, शास्त्र के विरुद्ध आप साधना कर रहे हो तो उसको त्यागना होगा ताकि हम अपना जीवन सफल करें, पीछे बनी सो बनी उसको भूलना होगा। एक रुमी नाम का एक रुचि नाम का ऋषि अपनी वेदों अनुसार साधना कर रहा था, उसको उसके चार पीढ़ी पितर बने हुए नजर आए, पिछली चार पीढ़ी पिताजी दादाजी दादाजी का यानी परदादाजी फिर चौथे नंबर का दादाजी, ये सारे भूत बने हुए थे, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना करके और स्वयं भूत बन गए पितर बन गए। और रुचि क्या कर रहे थे? रुचि ऋषि ने वेदों को जाना, विद्वान पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने ये देखा कि वेदों में लिखा गीता और वेद सेम समझो, ये संक्षिप्त ज्ञान है वो विस्तृत ज्ञान है, बस इतना अंतर है। तो रुचि ने जाना उसमें वेदों को पढ़ा समझा कि एक भगवान की भक्ति करें और परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्य देवताओं की पूजा करनी मूर्खता है, ना श्राद्ध निकालने चाहिए, ना कोई पितर पूजने चाहिए, ना भूत पूजने चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वेदों अनुसार रुचि ऋषि साधना कर रहे थे। उन्होंने शादी भी नहीं कराई, इतना प्रेरित हो गए। जब वो हो गए 40 वर्ष की आयु के रुचि ऋषि, तब उसको उसके 3-4 पीढ़ी पीछे के पितर दिखाई दिए और पितरों ने कहा कि बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई? शादी तो एक बहुत अच्छा पुण्य कर्म है, और फिर तूने शादी करा करके क्या करना चाहिए था? पितरों की पूजा करनी थी, हमारी पूजा करो, श्राद्ध निकालो, अतिथियों की पूजा करो, बड़ा पुण्य होता है। रुचि कहता है कि हे पितरमहो, वेद में इस पितर पूजा को, कर्म कांड को, श्राद्ध निकालने को मूर्खों की पूजा कहा, अज्ञानियों की, तो आप मुझे क्यों इस दुष्कर्म में लगा रहे हो? चारों पितर भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, विद्वान पुरुष थे, लेकिन उन्होंने वेद जरूर पढ़े पर साधना करी वही जो परंपरागत थी, गीता और वेदों के विरुद्ध किया, जिससे वह पितर बन गए। अब वो कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें तनक भी अंतर नहीं है कि वेद में इस कर्म मार्ग को अविद्या कहा है। बताओ फिर क्या कसर रही? जब स्वयं भी कहते हैं कि वेद में गलत बताया है कि श्राद्ध नहीं निकालने, पितर नहीं पूजने, भूत नहीं पूजने और देवता नहीं पूजने, लेकिन फिर क्या बताते हैं कि देखो अतिथियों की पूजा से, पितरों की पूजा से पुण्य में लोगों की प्राप्ति होती है, इतना तो पितर कर ही सकते हैं। और यही गीता में मना किया कि मूर्ख लोग आन उपासना करके अन्य देवताओं जैसे भोगों को भोग के और शीघ्र ही फिर जन्म मृत्यु के दुख को उठाते रहते हैं, और यही तो नहीं करना था जो पितर बता रहे हैं। अब देखो गीता तो है भगवान का आदेश, संविधान परमेश्वर का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, और प्राण है ये किसी अन्य देव के आदेश, और ये आदेश है परमात्मा का गीता, और ये प्राण है ये किसी ऋषि के या किसी पितर के या किसी देव के, ये उस परमात्मा के कानून से अगर मिलते हैं तो ठीक है, उसके विरुद्ध है तो वो हानिकारक है, वो आदेश हमने नहीं मानने। जैसे एक पुराने समय की बात है, किसी SHO का, थानेदार का एक दोस्त था कोई ग्रामीण, उस ग्रामीण का एक पड़ोसी उसे बहुत तंग करता था, तो उस व्यक्ति ने जाके अपने दोस्त उस SHO से कहा कि दरोगा जी, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है और बहुत शराब पी कर गाली गलौज करता है, कभी किसी बात पे झगड़ा, कभी किसी बात पे झगड़ा, मैं तो तंग आ लिया, कुछ समाधान करो। अब थानेदार बोला भाई मार लठ सिर में, माप देख लूंगा। अब उसने पाके उस सहारा उस SHO का, अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई कर दी, उसका लठ मार दिया और वो पड़ोसी मर गया। अब मृत्यु होगी उसकी, तो फिर वही थानेदार अपने उसी जिसको आदेश दे रहा था उसी का थकड़ी लगा के ले गया और फांसी की सजा हुई उस थानेदार के आदेश को मानने से, क्योंकि थानेदार का आदेश उस संविधान के विरुद्ध था, राजा के बनाए हुए का, तो उस व्यक्ति विशेष के आदेश को मानने से उसने फांसी की सजा उठानी पड़ी, उसने उसके ऑर्डर ओबे कर लिया। इसी प्रकार ये थानेदार समझो, ऋषि विषि जो इन मार्कंडे पुराण आदि किसी भी पुराण में जो अपना अपने भक्ति के आदेश तो दिए हैं, वो एक व्यक्ति विशेष के आदेश है, और गीता में परमात्मा का स्वयं आदेश है, ये संविधान है, तो हमने संविधान के विरुद्ध साधना करेंगे तो इसका दोष हमें भारी मिलेगा, उसकी सजा उठानी पड़ेगी, और यही कारण हो रहा है। और जब तक इस मार्ग को नहीं बदलेंगे ये कष्ट पे कष्ट आते रहेंगे। दास ने कोई शौक नहीं है आपको किसी को साधना को गलत बताने का, लेकिन मजबूरी होगी, हम टीचर बना दिए, हम गलत नहीं बोल सकता, दास से कोई मानो से बेशक मत मानो, हम वही बताएंगे जो हम आपका भला होगा, नहीं तो आप आरूढ़ करी रखे हो गलत साधना पर जो शास्त्र विरुद्ध है। अब देखिएगा मार्कंडे और ब्रह्म पुराणांक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, कार्यालय कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, ये देखो अंदर भी लिखा है मार्कंडे ब्रह्म नीचे मार्कंडे ब्राण ब्रह्म प्राणांक नीचे कहां से छपी है ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी एमए शास्त्री केशवराम अग्रवाल गोविंद भवन कार्यालय के लिए गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित है। इसमें 237 पृष्ठ पर मार्कंडे पुराण में रुचि ऋषि को उसके चार पिछले पितर दिखाई दे रहे ये देखिएगा ये चार पितर हैं ये रुचि ऋषि है और पिछले चार भूत इकट्ठे दिख जाए आदमी का वैसे कलेजा फिट जा आधा तो वैसे डर जाते कितना हिम्मत का आदमी हो तो इन पितरों ने नो डरा धमका के हमारे साथ ऐसा क्योंकि आप दुखी हुए गलत साधना करके फिर ये फंसा ली प्यारी आत्मा जो वेदों अनुसार साधना करना चाहे था। अब देखिएगा नीचे रोच मुनि की उत्पत्ति मार्कंडे जी कहते हैं या नीचे देखो पितर बोले क्योंकि रुचि की कथा है ज्यादा ना सुना के मैं सिर्फ उतना ही सुनाऊंगा जितना आपको आसानी से समझा जा सके। पितर बोले बेटा विहा सर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कर्म है उसे तुमने ऊपर देखो क्यों नहीं किया ग्रस्त पुरुष साथ समस्त देवताओं को पितरों को ऋषियों को और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करते हैं वह सभा के उच्चारण से देवताओं को श्रद्धा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि शरदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। अब देखो नीचे यहाँ देखो तो रुचि बोला रुचि ने पूछा पितर महो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है आप भी मानते हैं बिल्कुल सही है और फिर अग्रम सगरम अपने लगाते हैं वो थानेदार वाला ऑर्डर है ये नहीं मानना हमने आगे हमने इनके मुख से स्वयं कहा इन्होंने कि वेद में ठीक लिखा कोई गलत नहीं है बिल्कुल सही है फिर हम बेसही पर ये क्यों लगाया उस पर प्यारी आत्मा को इन्होंने डरा के धमका के और फिर रेम आ जाता हमारे अंदर या ममता भी बहुत कसूती एक पिताजी दिखे हैं तो इसका कर दो कल्याण कर दिया पिताजी तो न्यू का नहीं आप भूत और बन जाओगे पिताजी का तो कोई समाधान होना है नहीं उसने कर्म दंड वो भोगना है क्योंकि उसकी करनी बन चुकी है बिगड़ चुकी है अब हम अपनी ओर बिगाड़ बैठेंगे इसलिए ये हमारा सारी कहानी बिगड़ती चली गई। अब पितरों की अन्य देवताओं की पूजा को गीता में मना किया ये मना करने वाला कौन है अब ये जानना बहुत जरूरी है जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप क्योंकि पिछला ज्ञान जो हमने सुना है वो स्वस्थ नहीं है वो चिकित्सावान ज्ञान नहीं है वो अस्वस्थ ज्ञान है उलझा ज्ञान है वो बीमार ज्ञान है वो ठीक नहीं है। जैसे सबसे पहले ये निर्णय करना होगा कि गीता जी बोला किसने अभी तक हम सुनते रहे श्री कृष्ण जी ने गीता बोला नहीं श्री कृष्ण जी ने तो गीता में एक अक्षर भी नहीं बोल रखा एक अक्षर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नहीं बोल रखा शरीर श्री कृष्ण का बोल रहा था लेकिन अंदर जो कैसेट चल रही थी वो ब्रह्म की चल रही थी वो काल बोल रहा था। अब जैसे एक प्रेत आत्मा और दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है उसमें जो ओरिजिनल आत्मा होती है शरीर जिसको अलॉट हो रहा है वो नहीं बोल पाती वो तो वो प्रेत बोल रही प्रेत आत्मा बोल रही होती है और अपनी बोली बोल कर निकल जाती है उस जब वो होश में आती है वो पहले वाली जिसका शरीर था वो आत्मा फिर उसको नहीं मालूम मैंने क्या कहा था फिर दूसरे बताते हैं कि आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे, आपने ऐसे बोला था, तो ऐसे कह रही थी, तो ऐसे कह रहा था। हम ही बताते हैं जब उसको दो चार बातें याद हो जाती है, फिर उस समय भी कहने लग जाती है एक दिन मैंने बोली थी, एक दिन मैंने बोला था, लेकिन उसको उस समय कुछ ज्ञान नहीं, तूने क्या बोला था। ऐसे ये काल जो है, ब्रह्म, ब्रह्म कहो, काल कहो, चर पुरुष कहो, इसको ज्योति निरंजन कहो, ये काल है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, शेरा वाली या भवानी है, अधम आया है। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी तक हमने परंपरागत लोकवेद के आधार से यही सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके माता पिता कोई नहीं है, ये सर्वेश्वर हैं, ये महेश्वर हैं, ये कालज्ञ हैं, ये मृत्युंजय हैं, लेकिन ये सब लोकवेद था, ये केवल अपनी सोच थी उन महापुरुषों की, उन टीचरों की, उन धार्मिक गुरुओं की, जिन्होंने अपना सिलेबस पढ़ के भी ना देखा, जिन्होंने अपने ये शास्त्र उठा के भी नहीं देखे, जिनके आधार पर रोटी खा गए और दुनिया को अनजान रास्ते पर चला गए। अब आपके सामने आएगा कि ये ब्रह्म कौन है, इसकी क्या स्थिति है, ये काल कौन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये कहां प्रमाण है, ये अपने उन्हीं पवित्र शास्त्रों में प्रमाण है। कौन कौन में? पवित्र शिव पुराण में, पवित्र देवी भागवत महापुराण में और पवित्र गीता जी में आपके सामने आओगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। और ये अविनाशी नहीं है, ये तो नाशवान है, स्वयं स्वीकार करते अपने मुख से भगवान कि हम नाशवान, अविनाशी नहीं है। और ये ब्रह्म भी अविनाशी है, अविनाशी नहीं है, ये भी नाशवान है, अपने मुख से गीता में आपके सामने पेश होगा। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना, मन को डामाडोल नहीं करना कि ये क्या प्रमाण है, कैसा है। अब आपके सामने प्रमाण ही प्रमाण आएंगे और दूसरी बात ही नहीं होगी। ये देखो पहले एक ब्रह्मांड का चित्र, इसको ये एक ब्रह्मांड है, इसी को ऊपर देखो, एक ब्रह्मांड अर्थात अंड का लघु चित्र। अब इसी को ब्रह्मांड कहते हैं, इसी को अंड भी, अंड इसलिए कहते हैं ये अंडे आकार में, इलिप्टिकल शेप है इसकी, ये सारे की, और पेंड इसको इसलिए कहते हैं कि इस मानव शरीर में केवल एक ब्रह्मांड की ही व्याख्या विवरण है। इसमें जो समाधिस्थ लोग होते हैं, चाहे वो मंडलों के राग सुने और चाहे अंदर का प्रकाश देखे, वो केवल इस एक ब्रह्मांड का ही देख सकते हैं, इससे बाहर का कुछ नहीं देख सकते वो। अब ये एक ब्रह्मांड है, इसमें क्या व्यवस्था है कि इसमें सात तो ये नीचे के लोक हैं, ये अतल उतल तलातल ये पाताल, ये पाताल लोक में और ये ऊपर फिर पृथ्वी लोक में और इस स्वर्ग लोक में, इन तीन लोकों में केवल जीव स्थिति है और इन जीव स्थिति के कंट्रोलर कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये भगवान श्री विष्णु जी, ये भगवान ब्रह्मा जी, ये भगवान शिव जी, ये एक एक विभाग के मंत्री समझो एक प्रांत में। जैसे ये एक प्रांत है और इसमें ये ज्योत निरंजन मुख्यमंत्री है और इसके तीन ये मंत्री समझो एक एक विभाग के, और इन तीनों भगवानों की केवल इन तीन लोकों में एक एक विभाग पर प्रभुता है, बस इतने भगवान ये हैं जरूर। आगे देखो, अब ये ब्रह्म लोक है, ये ज्योत निरंजन काल ने, ब्रह्म ने अपना एक गुप्त स्थान बना रखा है, ये एक ब्रह्म लोक है और इसमें तीन एक ऐसे स्थान बनाए हैं जैसे एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे एक एक मकान में तीन कमरे हों और एक कमरे में तो देशभक्तों की चित्र लगे हों, तो आपके मन में जब तक वहां रहेंगे एक विशेष देशभक्ति भरी रहेगी, आपके ऐसा गुण भर जाएगा। और जब हम जाएंगे दूसरे कमरे में जिसमें ऋषियों और महर्षियों के, संतों और भक्तों के चित्र लगे हों, तो आत्मा में परमात्मा की चाह तड़फ बनी रहेगी, आप ऐसा गुण भर जाएगा हमारे अंदर। और एक में लगे हों अश्लील फोटो, तो वहां जाने के बाद मन में वही तुच्छ विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। जब तक उनमें देखेंगे, देखते रहेंगे तो मन में मलिनता ही आएगी। ऐसे इन तीन स्थानों को उस ज्योत स्वरूप भगवान ने ऐसे गुण युक्त बनाकर, ये स्वयं ब्रह्म, ये काल महाविष्णु रूप में स्वयं यहाँ विराजमान होता है सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, और अपनी पत्नी दुर्गा को यहाँ रखता है ये महालक्ष्मी रूप में। और फिर जब तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं सदाशिव महाशिव आप होता है, और अपनी पत्नी को ये महापार्वती रूप बनाकर वहां रखता है, और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं ही आगे गुण महाब्रह्मा रूप में होता है, और अपनी पत्नी दुर्गा को ये महापार्वती रूप में, महास्यावत्री रूप में रखता है। अब जब सबसे पहले यहाँ होते हैं तो इस ये दोनों के दोनों को निकाल, और ये दुर्गा या शेरा वाली, इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण बन जाता है। उत्पत्ति होते ही उसमें अपगुण गुण आ जाएंगे। अब जैसे किसी का पुत्र चोर, बाप चोरी करे तो बच्चे में भी वो नेचुरल गुण हो जाते हैं। कोई शराब पीता है तो बाप बेटे में जरूर गुण आ जाएंगे, वैसे ही प्रकृति बन जाती है। तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका ये रजोगुण बना देते हैं, नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यहाँ पर जब दूसरे नंबर का ये शिव विष्णु लोक, ये यानी सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसको वैकुंठ, महावैकुंठ भी कहा है, और इसमें ये दुर्गाल और दुर्गा दोनों, यानी महाविष्णु और महालक्ष्मी रूप में ये दोनों रहते हैं, काल और दुर्गा। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं, और इसको फिर बेहोश कर देते हैं, इसका नाम विष्णु रख देते हैं। फिर जब ये जवान होते हैं जब इनको होश में ला देते हैं। अब यहाँ देखो, ये है तमोगुण प्रधान क्षेत्र, इसमें ये स्वयं काल सदाशिव रूप में ये ब्रह्म, और अपनी पुत्री दुर्गा को ये मां पार्वती रूप में रखकर, यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसमें तमोगुण भर देते हैं, अप हो जाओ तमोगुणी, और फिर उसमें उसका नाम रुद्र, महेश्वर, शिव आदि रख देते हैं। और फिर इस काल ने क्या किया है, फिर देखो नीचे, ये जो लोक है इस दुर्गा का अलग से अपनी पत्नी का एक लोक और दे रखा है, इसको यहाँ बैठ के या पूरे ब्रह्मांड को फिर चलाती है। और ये काल जो है, पूरा दिखाओ, ये काल जो है ये इसने ऐसा स्थान बना रखा है, यहाँ से एक और एक बाउंड्री बना रखी है इन चारों तरफ से इनके, ये अभाव से नहीं दिखा पाए क्योंकि काफी समय कुछ दिखाना होता है। अब इसको दिखाएं तो इतना बड़ा चित्र अलग बनाना पड़े। अब देखो यहाँ से इसने फिर बाउंड कर रखा है इसको अलग से, यहाँ ये दुर्गा भी नहीं जा सकती इसकी शक्ति बिना। इस जब तीनों पुत्रों की उत्पत्ति कर देता है, इसको यहाँ छोड़ देता है, जब चाहता है ये ऊपर उसको उसी समय ले लेता है। और जब ये एक स्वर्ग, महास्वर्ग बना रखा है, एक ये पर्वत है, इस पे एक बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा, और इसके ऊपर इसने महास्वर्ग की रचना की हुई है, और इसी में आगे एकांत स्थान और बीच में एक पारट करके एक नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक और डुप्लीकेट अगमलोक और डुप्लीकेट अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी अपनी प्रकृति दुर्गा दे। और ऐसा ये सब जीवों को जाल में, धोखे में डाले हुई है। अब देखो इसका प्रमाण, अब ये क्या बताना चाहता दास आपको कि ये एक ब्रह्मांड हुआ, और इस ब्रह्मांड में केवल, फिर ये जब तीनों पुत्र जवान हो जाते हैं इनकी शादी कर देते हैं, एक एक लड़की समुद्र मंथन में निकलती है, और बड़ी का नाम सावित्री, वो ब्रह्मा से शादी कर देते हैं, ये दिखाऊंगा आपको शिव इसमें दुर्गा प्राण में, और दूसरी का नाम लक्ष्मी और तीसरी का ये पार्वती रखकर तीनों की शादी करके फिर यहाँ छोड़ देते हैं, और यहाँ से फिर इनको आदेश देते हैं अपनी गुप्त वाणी से, गुप्त अंदर प्रवेश करके या आकाशवाणी करके इन तीनों लोगों का ये कंट्रोलर बना दिए। ब्रह्मा हमारी उत्पत्ति करावा जीवों की, ये गुण है इसमें रजोगुण, यानी हमारे अंदर एक विशेष वासना पैदा करके बाई फोर्स बच्चों की उत्पत्ति करवाई जाती है। और दूसरे भगवान विष्णु है, ये हमारे एक दूसरे में मोह ममता इतना जबरदस्त हो जाता है, जैसे शराबी शराब पी ले, उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक ढंग से चल रहा है या कोई कोई गलत, मतलब जैसे तुतला कर बोलेगा कि लड़खड़ा कर चलेगा या कि गिर जाएगा कुरड़ियों पे गंदे स्थान पे, तो उस जब तक वो नशा रहेगा उसके बस की बात नहीं, चाहे कितना सावधान होकर चल ले वो गिरेगा। ऐसे ही हमारे ऊपर ये प्रभाव है, हम कितने ही होशियार हो लें, कितना ज्ञान हो लें, पर ममता हमारे अंदर से हटे नहीं, जैसे संपत्ति और संतान की, बहन और भाई की, पति और पत्नी का अंतिम सांस तक मोह बना रहता है, जो मृत्यु तड़के जहां पर आस्था नहीं हट सकती। ये इस सतोगुण का प्रभाव है, दबाव है, जिससे हमारे अंदर सखीथी बनी रहती है, इसको सखीथी कहते हैं। और तीसरे भगवान शंकर, ये आपको सर्वविदित है, ये सहार करने का महकमा हमारी मृत्यु करता है, हमें मार डालता है, बेटा मरो चाहे बेटी, ये इनका गुण है। अब ये एक ब्रह्मांड हुआ, इसमें ये धर्मराज का लोक भी है और ये पूर्ण परमात्मा, यहाँ एक ऐसी बाउंड्री है जहाँ पर इस परमेश्वर का स्थान है, ना ये ब्रह्म जा सकता, ना यहाँ के कोई देव जा सकते, वहाँ केवल ये परमेश्वर और इस परमेश्वर की प्यारी आत्मा वो रहती है। ये ऐसे यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ बाउंड्री है इसकी अलग से। तो ये परमात्मा यहाँ गुप्त, इनको सबको मालूम है कि एक परम शक्ति ऊपर बैठी है, तब ये अपना न्याय ठीक रहनी तय काल जो है डगमग कर दे, सारे बीमारी सारे काम बिगाड़ दे। तो ऐसे ये एक ब्रह्मांड है, ये परमात्मा अन्य रूप में रहता है, यहाँ पर अपनी शक्ति बनाकर कोई एक एक, एक सिद्धि है जो बहुत चोले बना ले, बहुत शरीर बना ले, जैसे सूर्य को आप कहीं देख लो वही दिखाई देगा, मद्रास में देख रहे हो ने सोचा हमारे साथ है, हम देख रहे हमारे साथ, ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इतनी ऊंचाई पर है उस लोक में कि उनको यहाँ बैठा दिखाई देता, नजर आता है इन सबको, ऐसा सब समझो। और इसका विशेष स्थान भी यहाँ पर है जहाँ से इसका ये सब व्यवस्था कर रहा है। अब ये तो आपने एक ब्रह्मांड देखा, ज्योति निरंजन भगवान के ऐसे 21 ब्रह्मांड है, ये देखिएगा, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, केवल 21 ब्रह्मांड का राम भगवान, ये काल है, ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है। इसमें देखिएगा ये नीचे 20 ब्रह्मांड तो नीचे हैं, ये भी अंडाकार है, एलिप्टिकल शेप है इनकी, इन सभी महाब्रह्मांडों की भी, ब्रह्मांडों की भी। अब इसमें क्या लिखा है, आपने जो एक ब्रह्मांड अभी देखा था, ये कोई भी एक समझो, इन सब में सिमिलर एक जैसी ही व्यवस्था है। तो ये ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया, ये 4 महाब्रह्मांड हो गए और 5 ब्रह्मांड हुए, 20 ब्रह्मांड हो गए, एक एक में 5, 20 ब्रह्मांड हो गए और 21 में ये जो स्थान है एक महाब्रह्मांड के तुल्य है, ये एक महाब्रह्मांड है, ये स्थान समझो, ये चित्र इसलिए खुले बनाने के लिए ये सारे विस्तृत से बनाने पड़ रहे हैं स्थान अभाव से। तो यहाँ फिर एक इसने काल ने, ये है वो इसका अपना निज स्थान जहाँ ये वास्तविक उस रूप में रहता जो श्री कृष्ण जी को दर्शन दिए थे, मैं काल हूँ अर्जुन और मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, इसने कसम खा रखी है कि मैं जैसा मैं हूँ एज इट इज, कभी मुझे कोई नहीं देख पाओगा, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। और ये आकार में है, मनुष्य जैसा है, इसका तेजो में शरीर है और इसका बहुत और मानव जैसा शरीर है, लेकिन इसका शरीर जो उसका फेस है वो थोड़ा भयंकर डरावना सा है, ओछा माथा है और इसके लंबे दांत हैं, आगे के 2 दांत काफी लंबे हैं। और कहता है ये, और जब ये इसमें एक सिद्धि होती है, जैसे विराट रूप दिखा देना ये सिद्धि होती है, ये ऐसा भी बना सकता है, 1000 भुजा है इसकी, 1000 भुजा तक ये बना सकता है और 2 में भी रह सकता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की 1000 भुजाएं हैं और ये 2 में भी आ सकते हैं। अब देखिएगा, अब इस ऊपर वाले अपने लोक में इसने एक और कमाल कर रखा है, ये नकली 4 लोक फिर बना दिए इसी अपनी दुर्गा से, कंस्ट्रक्शन करवा दी, जैसे नकली सतलोक और नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और डुप्लीकेट अनामी लोक, कि इसको मालूम था कि कलयुग में कबीर परमेश्वर आएगा या अपना कोई संदेश वाक भेजेगा, वो सत्ज्ञान देंगे। उससे पहले इसने कहा था कि मैं 12 नकली पंथ पर चला दूंगा और सभी जीवों को इस नकली सतलोक अगमलोक अलखलोक की महिमा सुना सुना कर मूर्ख बना दूंगा, और जब तेरा संदेश वाक आएगा तो वो पहले ही गलत ज्ञान पर इतने आधारित हो जाएंगे कि कई मानने भी को नहीं कहते। और ऐसा बने, कबीर साहब कह रहे थे कि मैं सब जानता हूँ, कैसे मैं अपनी प्यारी आत्माओं को शरण मलूंगा। तो यहाँ ये काल का एक स्थान है जिस पर तपत शिला बनी हुई है, ये 21वें ब्रह्मांड में, और यहाँ ये 1,00,000 जीवों का रोज आहार करता है, मानव शरीरधारियों का, स्त्री या पुरुष, बालक या बच्चे, इसने तो हमें अपनी खेती बना रखी है। और यहाँ सबका 1,00,000 का आहार करता है। किसी का बेटा मरेगा आज, किसी की बेटी मर जाएगी, और कल ना जाने कितने परिवारों का विनाश हो लिया। कोई टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं, किसी का रोटी नहीं बन रही बेचारे, उनका कोई हाहाकार मची हुई। 1,00,000 प्राप्त।